ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार गठन के 2 साल पूरे होने पर अब तक की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में साझा करेंगे जानकारी। डिजिटल अपराध न्यूनीकरण और कारोबार में पारदर्शिता बहाल करने के लिए सूचना प्रविधि विधेयक लाया गया है। संचार मंत्री गोकुल प्रसाद पासकोटा का कथन। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्थानीय तहों को शर्त सहित मुहैया कराया 2 अरब रूपये का अनुदान। और चीन में कोरोना वायरस से जहां 6 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई, वहीं 1700 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी हैं संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की बैठक को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा आज के लिए निर्धारित संबोधन कल के लिए टाल दिया गया। आज राष्ट्रीय सभा के सांसद दुर्गा प्रसाद उपाध्याय का निधन होने के कारण प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के लिए तय किए गए प्रधानमंत्री ओली के संबोधन को कल के लिए टाला गया। कल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने नेतृत्व की सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस दरमियान सरकार द्वारा किए गए काम, हासिल की गई उपलब्धियों और समसामयिक विषयों में अपने विचार सदन को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में विक्रम संवत 2074 फागुन 3 गते को मौजूदा सरकार गठित हुई थी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में राष्ट्रीय सभा के सांसद दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। विक्रम संवत 2074 के चुनाव में प्रदेश नंबर 5 से नेपाली कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए उपाध्याय का 51 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित उपाध्याय का इलाज के क्रम में आज निधन हुआ। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अनुशासित और देश के प्रति समर्पित युवा हर देश की पहली आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सेवा दल द्वारा संचालित 15वें बैच सीनियर डिवीजन ट्रेनिंग के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि युवा के सर्वांगीण विकास में सहयोग करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में इस समय जन निर्वाचित स्थिर और मजबूत सरकार है, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अध्ययन, रोजगार और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। अनुशासन ही राष्ट्र सेवा की नींव है के नारे के साथ विक्रम संवत 2022 में नेपाली सेना द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सेवा दल राष्ट्रीय एकता स्वयंसेवकत्व जैसी तालीम युवाओं को देता आ रहा है। 100 दिनों की तालीम में सहभागी 509 विद्यार्थियों को आज दीक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद पासकोटा ने कहा कि डिजिटल कारोबार में वैधता बहाल करने के लिए सूचना प्रविधि विधेयक जरूरी है। आज काठमांडू में नेपाल कंप्यूटर एसोसिएशन कैन के 26वें संस्करण कैन इन्फोटेक 2076 का उद्घाटन करते हुए संचार मंत्री पासकोटा ने कहा कि डिजिटल अपराध न्यूनीकरण और कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रविधि विधेयक लाया गया है। ये साफ करते हुए कि किसी के प्रति भी पूर्वाग्रह रखे बिना कानून बनाया गया है, उन्होंने बताया कि जुर्माना और सजा के प्रावधान में कुछ रियायत रखी जा सकती है। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्थानीय तहों को 2 अरब रूपये शर्त सहित अनुदान रकम की निकासी की है। कार्यक्रम अंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए स्थानीय तह अंतर्गत रोजगार सेवा केंद्र में सूचीकृत बेरोजगारों को रोजगारी देने के उद्देश्य के साथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने रकम निकासी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता सुमन घिमरे से मिली जानकारी के मुताबिक 2 अरब रूपये को विभाजित कर 623 स्थानीय तहों को भेजा गया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा ने राष्ट्रीय सभा के सांसद एवं पार्टी के महाधिवेशन प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सभापति देववा ने आज शोक वक्तव्य के जरिए उपाध्याय की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ कि थाहैन, नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार 14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारि रख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415# डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
1415 1415 1415 1415। मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चीन के वुहान से लाए जाने वाले नेपाली विद्यार्थियों को रखने के लिए बनाए जा रहे क्वारंटाइन का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सचिव नारायण प्रसाद विडारी ने दी। सचिव विडारी ने बताया कि चीन से लाए जाने वाले 185 विद्यार्थियों में 44 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं व पुरूषों और चिकित्सकों की टोली को अलग अलग ब्लॉक में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी तरह विमान चालकों, सहचालकों, परिचारिकाओं को चागुनारायण 6 की पेयजल तालीम केंद्र के भवन में बनाए गए ब्लॉक में रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने साफ किया कि क्वारंटाइन को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार ही बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी को 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा और इस दौरान यदि किसी को बुखार या सर्दी जुकाम होता है तो उन्हें टेकू अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बालवाटार की ललिता निवास जमीन घोटाले के मामले में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों माधव कुमार नेपाल और डॉ बाबूराम भट्टराई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न किए जाने पर लिखित कारण पेश करने का आदेश जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा की एकल पीठ ने आज इस विषय में 15 दिनों के अंदर लिखित कारण पेश करने का आदेश जारी किया। बता दें कि अख्तियार ने माघ 22 को ललिता निवास जमीन प्रकरण में 175 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। रेडियो नेपाल की पूर्व हिंदी समाचार वाचिका कमलावती तुलाधर का आज 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तुलाधर न्यूमोनिया से ग्रस्त थी। विक्रम संवत 2008 में रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार वाचन करती थी तुलाधर। उनके निधन पर रेडियो नेपाल ने दुख व्यक्त करते हुए हार्दिक समवेदना जताई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमण से अब तक 6 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो चुकी है और 1700 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं। ये जानकारी वहां के अधिकारियों के हवाले से दी गई है। चिकित्सकों के लिए आवश्यक सामग्रियों का अभाव होने और स्वास्थ्यकर्मियों के हालात के बारे में आम लोगों को जानकारी देने की मांग किए जाने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में ये तथ्य साझा किया गया है। कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1300 से अधिक हो गई है जबकि 63,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि चीन के हुबेई प्रांत से फैले कोरोना वायरस के कारण चीन के बाहर की स्थिति उतनी भयावह नहीं है। इसी बीच चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से संक्रमण होने के बाद ठीक हुए लोगों की रक्त कोशिकाओं में वायरस को नष्ट करने वाले तत्व पाए जाने का दावा किया है। बीजिंग न्यूज में प्रकाशित समाचार के मुताबिक चीन की राष्ट्रीय बायोटेक समूह ने ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा में कोरोना प्रतिरोधी एंटीबॉडी पाए जाने की जानकारी दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। सरकार गठन के 2 साल पूरे होने पर अब तक की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में साझा करेंगे जानकारी। डिजिटल अपराध न्यूनीकरण और कारोबार में पारदर्शिता बहाल करने के लिए सूचना प्रविधि विधेयक लाया गया है, संचार मंत्री गोकुल प्रसाद पांसकोटा का कथन। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्थानीय तहों को शर्त सहित मुहैया कराया 2 अरब रूपये का अनुदान। और चीन में कोरोना वायरस से जहां 6 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई वहीं 1700 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी हैं संक्रमित। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।